हरे कृष्णा, आप सबका श्री श्री राधा गोकुलान मंदिर में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगले शनिवार को श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया रथ पे सवार होकर बेलगाम शहर को पावन करने वाले हैं। जोरों से जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। पीछे भी सब प्रसाद पैकेट्स पैक कर रहे हैं भक्तगण। तो आज ये उचित रहेगा कि हम जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा श्रवण करें। वैसे तो बहुत कुछ है सुनने लायक, कई लीलाएं हैं, लेकिन आज विशेषकर भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्राकट्य लीला की चर्चा करेंगे। वैसे ये वैदिक इतिहास की बहुत एक प्राचीन और रोचक घटना है। हजारों 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 साल पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, और वो नीलाचल प्रांत में रहते थे। नीलाचल प्रांत आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है। और वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी भक्त थे और बड़े लंबे समय से आतुर थे कि किसी न किसी दिन मुझे साक्षात भगवान का दर्शन मिलना चाहिए। एक बार ऐसे हुआ कि उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया। क्योंकि वो राजा बड़े भक्त थे तो हमेशा इस तरह से ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुलाया करते थे अपने दरबार में, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा वार्ता होती रहती थी। तो एक बार जब ये ब्राह्मण आए तो उन्होंने ये खबर दी राजा को कि भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर रूप यहीं पर पास में कहीं है, और भगवान के इस रूप का नाम है नील माधव, और कहीं जंगलों में, पहाड़ों में ये मूर्ति छुपी हुई है। तो नील माधव जी का वर्णन सुनने पर राजा इंद्रद्युम्न बड़े उत्सुक हुए इनका दर्शन करने के लिए, और उन्होंने चाहा कि अगर इनकी सेवा मैं कर पाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अपने राज में कई ब्राह्मणों को उन्होंने चुना और अलग अलग दिशाओं में उन्हें भेज दिया और कहा कि किसी न किसी तरह से नील माधव जी को ढूंढ निकालो और फिर मुझे वहां ले जाओ। सभी ब्राह्मण इस कार्य में असफल रहे। केवल एक ब्राह्मण छोड़कर सारे अन्य ब्राह्मण राजा के दरबार में लौटकर चले आए और कहा कि हम ढूंढ नहीं पाए नील माधव जी को। लेकिन एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था विद्यापति। विद्यापति केवल अकेले लौटकर नहीं आए। ऐसे हुआ कि विद्यापति जब भ्रमण कर रहे थे तो ऐसे स्थान में पहुंचे जहां वहां शबरों का समाज था। ये शबर जो हैं, ये अनार्य लोग थे और उनका व्यवसाय था सुवरों का देखभाल करना। तो ऐसे व्यवसाय करने वाले लोग जंगल में वहां रहा करते थे। तो विद्यापति ब्राह्मण वहां पर पहुंचे और वहां पर एक घर में जाके उन्होंने आश्रय लिया, और वो घर शबरों के प्रमुख मुखिया थे जिनका नाम था विश्ववासु, उनका था वो। लेकिन उस समय विश्ववासु वहां पर घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन उनकी कन्या घर में थी। तो फिर भी उस घर में निवास किया विद्यापति ने। जब शबरों के प्रमुख विश्ववासु घर लौटकर चले आए तो बड़े प्रसन्न हुए इस ब्राह्मण को देखकर, और अपनी कन्या से आदेश दिया कि इस ब्राह्मण की आप सेवा करो। और थोड़े ही दिनों में विश्ववासु ने यह प्रस्ताव विद्यापति के सामने रखा कि आप मेरे लड़की के साथ विवाह क्यों नहीं करते? तो विद्यापति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया और विद्यापति थोड़े दिन वहां रहने लगे। लेकिन इस दौरान विद्यापति ने अपने आतिथेय अर्थात विश्ववासु के व्यवहार में कई विशेषताएं देखी। कई विचित्र इनका व्यवहार था। और क्या विचित्र बात थी कि वो हर दिन सायंकाल में सूर्यास्त के बाद घर से निकल पड़ते थे, रात भर बाहर रहते थे और फिर अगले दिन दोपहर को लौट कर आते थे, कपूर चंदन इत्यादि इन सुगंधों से युक्त। आजकल कोई बाहर रात भर बाहर रहते हैं तो चंदन के सुगंध से युक्त होकर नहीं आते हैं, कोई और गंध से युक्त होकर आते हैं, है ना, खास करके बेलगाम में हमने देखा है। लेकिन ये जो विश्ववासु थे, कपूर इत्यादि के गंध से युक्त होकर आते थे और ये जानने के लिए बड़े उत्सुक थे विद्यापति ब्राह्मण कि ये कहां जाते हैं रात भर और क्या करके आते हैं। तो अपने पत्नी से पूछा, पत्नी का नाम था ललिता। तो ललिता ने जवाब दिया कि वैसे तो मेरे पिताजी ने मुझे सख्त मना किया है इस गुप्त बात को किसी से कहने के लिए, लेकिन आप मेरे पति हो और इतना आप मुझे कह रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं मेरे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूं। लेकिन फिर भी वास्तव में मेरे पिताजी बहुत दूर यहां से जाते हैं एक स्थान पर जहां पर भगवान का एक बहुत सुंदर अर्चा विग्रह है जिनका नाम है नील माधव, और हर रात को वहां पर मेरे पिता जाकर उनकी सेवा करते हैं और फिर दोपहर को लौट कर आते हैं। जब ये खबर विद्यापति ने सुनी तो उनके हर्ष के ठिकाने नहीं रहे, कहने लगे कि मुझे तो नील माधव का दर्शन करना ही करना है, किसी भी अवस्था में मुझे दर्शन करना है, तो वो अपने पिता से कहो कि वो मुझे कृपा करके ले जाए वहां। पहले तो विश्ववासु ने मना कर दिया कि मैं किसी को वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन अपने पुत्री के बारंबार अनुरोध करने पर विश्ववासु ने कहा कि ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं मेरे दामाद के आंखों के ऊपर एक पट्टी बांधूंगा ताकि उनको पता नहीं चले कि मैं कहां ले जा रहा हूं, ताकि अगली बार वो उस जगह को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि विश्ववासु चाहते थे कि मेरी ये सेवा मुझसे छीन नहीं ली जाए। अगर किसी को पता चल जाए कि मैं नील माधव जी की सेवा यहां कर रहा हूं, इतनी सुंदर मूर्ति है, इतनी आकर्षक मूर्ति है, सभी लोग आकृष्ट हो जाएंगे और सेवा करने के इच्छुक हो जाएंगे और फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। विश्ववासु वास्तव में भगवान के प्रेमी भक्त थे, लेकिन हमें यहां मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम कहें कि ये सेवा हमारे लिए है और कोई नहीं कर सकता तो ये हमारे लिए योग्य नहीं है। विश्ववासु ये भगवान के लीला में एक महत्वपूर्ण एक भाग ले रहे थे। तो खैर विश्ववासु का शर्त स्वीकार कर लिया विद्यापति ब्राह्मण ने। लेकिन उस समय ललिता ने क्या किया कि सरसों वो अपने पति के कपड़े के खूंट में बांध दिए ताकि जब उनके पति चलते रहे वन में तो ये जो सरसों हैं वो बिखेरते जाएं, ताकि जब वो लौट कर आए ये सरसों जमीन में जाकर पौधे बन जाएंगे और अगली बार उनको जाने की इच्छा हो तो पौधों को देखकर वो मार्ग बन जाएगा जिससे कि वो उसी ठिकाने फिर से पहुंच सकते हैं। बहुत बुद्धिमान थी ललिता जी। तो खैर विद्यापति ने ऐसे ही किया, सरसों जो है वो बिखेरते गए रास्ते में, बस अब छुपाकर अपने मुट्ठी में रखा था ताकि विश्ववासु को पता नहीं चला कि ये क्या कर रहे हैं। विश्ववासु तो केवल भाव विभोर होकर आतुर थे कि कब मैं नील माधव का दर्शन कर लूंगा, इसलिए उन्होंने देखा नहीं। तो खैर थोड़े समय बाद दोनों विश्ववासु और विद्यापति वहां नील माधव जी के पास पहुंच गए और विश्ववासु ने विद्यापति ब्राह्मण के आंखों के ऊपर जो पट्टी थी वो हटा दी। और जब नील माधव का दर्शन किया विद्यापति ब्राह्मण ने, तो उनकी वो इतने प्रसन्न हुए कि नृत्य करने लगे और सुंदर स्तुति करने लगे भगवान की। उनको वो आश्चर्यचकित हो गए इस सुंदर दृश्य को देखकर, और तुरंत उनके हृदय में भक्ति भावना जागृत हुई। तो उन्होंने सुंदर स्तुतियां अर्पण करी भगवान श्री नील माधव को। तो देखिए, भगवान ऐसे ही सुंदर सुंदर रूप ग्रहण करते हैं केवल अपनी सेवा स्वीकार करने के लिए और हमारा हृदय हमारा मन उनकी ओर आकृष्ट करने के लिए। क्योंकि यहां पर संसार में हम सुंदर रूप देखने के लिए इच्छुक होते हैं, तो भगवान स्वयं अपना सुंदर रूप दिखाते हैं जिससे कि संसार के सौंदर्य के प्रति हम आकृष्ट नहीं हों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वो कहते हैं कि हमेशा मेरा भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मेरी सेवा करो। तो ऐसे सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान ऐसे सुंदर रूप ग्रहण करते हैं जैसे कि यहां बेलगांव में उन्होंने राधा गोकुलानंद जी का रूप ग्रहण किया हुआ है। तो जब विद्यापति ब्राह्मण ने अपनी स्तुतियां समाप्त कर दी, तो उस समय विश्ववासु ने कहा कि मैं मेरी पूजा की तैयारी करने के लिए वन में जा रहा हूं, वहां से कंद मूल फूल इत्यादि फल लाने के लिए मैं जा रहा हूं, तो तब तक आप कृपा करके यहीं पर रहना। तो विद्यापति ब्राह्मण वहां बैठे रहे। वहां इतना सुंदर दृश्य था जंगल में, ऐसा सौंदर्य विद्यापति ब्राह्मण ने कहीं नहीं देखा था। और सौंदर्य को देखते देखते उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि वहीं पर पास में एक सरोवर था। सरोवर के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष था। उस वृक्ष के डाल पर एक कौवा था। वो कौवा सो रहा था और सोते सोते ही वो गिर पड़ा। जैसे कभी कभी बच्चे सोते हैं पलंग पर, नींद में ही पलंग से गिर जाते हैं, वैसे पक्षियों के साथ अक्सर नहीं होता है, लेकिन ये हो गया। तो वो कौवा अपने नींद में ही डाल से गिरकर उस सरोवर में गिर पड़ा और डूब गया, डूबकर मर गया। और जैसे ही वो मर गया, तो तुरंत एक चतुर्भुज वैकुंठ रूप वहां से प्रकट हुआ और वैकुंठ की ओर उड़ते हुए चला गया। तो विद्यापति के आंखों के सामने ये सब हुआ, इतने आश्चर्यचकित हुए कि ये सरोवर इतना पावन है कि इस जल का स्पर्श करने मात्र से इस कौवे को भी वैकुंठ रूप धारण मिल गया और वो वैकुंठ धाम चला गया। तो जल्दी से विद्यापति ब्राह्मण भी उस वृक्ष के ऊपर चढ़े और उस सरोवर में कूदने ही वाले थे कि उस समय अचानक एक आकाशवाणी हुई, अरे विद्यापति ब्राह्मण, तुम जो कार्य करने जा रहे हो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुमने भगवान के सुंदर नील माधव रूप का दर्शन किया है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम जाकर वापस राजा इंद्रदुम्न को यह खबर दे दो, क्योंकि उनका दूत बनकर तुम यहां पर आए हो और वो भी भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। तो विद्यापति ब्राह्मण ने यह बात सुनी, पेड़ से उतरकर फिर से नील माधव के सामने आकर बैठे और विश्ववासु शबर की प्रतीक्षा करने लगे। आखिर में विश्ववासु लौटकर वहां आए, उन्होंने पूजा समाप्त कर ली। जब विश्ववासु को यह पता चला कि इनको ये अद्भुत दृश्य दिखने में आया है, तो चिंतित हुए। और जब उन्होंने पूजा आरंभ की नील माधव की, तो नील माधव जी ने उनसे कहा कि अरे विश्ववासु, मैंने बहुत समय से तुम्हारी सुंदर कंद मूल फल फूल की सेवा स्वीकार की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, परंतु अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे भक्त राजा इंद्रदुम्न से राजसी ऐश्वर्यशाली सेवा स्वीकार करूं। तो जब विश्ववासु को ये सुना, तो उनको बड़ा धक्का लगा कि मेरी सेवा मुझसे छीन ली जाएगी, क्योंकि ये जो मेरे दामाद हैं वो जाकर राजा इंद्रदुम्न को खबर देने वाले हैं। तो घर पहुंचने पर विश्ववासु ने अपने दामाद को बंदी कर दिया, बांध दिया और अपने घर में रख दिया, घर के बाहर जाने के लिए मना कर दिया। तो ऐसे बंदी होने के बाद में विद्यापति सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो पुत्री ने बार बार अनुरोध करने के बाद में विश्ववासु राजा ने अपने दामाद को छोड़ दिया और फिर विद्यापति तुरंत पहुंच गए इंद्रद्युम्न राजा के दरबार में और ये खबर दे दी कि नील माधव को हमने ढूंढ लिया है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर कई लोगों के साथ में, ब्राह्मण और सैनिकों के साथ में, नील माधव को वापस ले आने के लिए निकल पड़े। और उस समय जो सरसों वहां बिखेरे हुए थे वो अभी तक पौधे बन गए थे, तो वो मार्ग आसानी से मिल पाया। लेकिन जब वहां उस स्थान पर पहुंचे जहां नील माधव हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां नील माधव गायब, वहां पे नहीं। बहुत ढूंढा इधर उधर लेकिन नहीं मिले। तो उस समय राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि शायद ये शबरों के प्रमुख विश्ववासु का काम है। सारे गांव को घेर लिया और विश्ववासु को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विश्ववासु मेरे बहुत प्रेमी भक्त हैं, इनको गिरफ्तार मत करो। तो फिर तुरंत राजा इंद्रद्युम्न ने उनको छोड़ दिया और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। और उस समय जब वो लौट कर आए तो बड़े उदास हुए। उन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरह से मुझे अभी सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। उस समय आकाशवाणी ने यह भी कहा कि हे राजन, नील माधव के रूप में अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये नील माधव का रूप अभी सदा इस ब्रह्मांड के लिए अदृश्य रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होने वाला हूं। तो जल्दी से जाकर इस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर की स्थापना करने की तैयारी करना। तो राजा वापस चले गए। उन्होंने सोचा कि कोई योग्य पुरोहित चाहिए ये मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से बढ़कर और बड़ा अच्छा पुरोहित कौन हो सकता है। ये थे पृथ्वी लोक पर और ब्रह्मा जी तो हैं ब्रह्म लोक पर, काफी दूर है। तो फिर भी वो गए, यहां से ब्रह्म लोक पहुंचे। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी का दर्शन किया, लेकिन ब्रह्मा जी कोई सभा में, मीटिंग में थोड़े व्यस्त थे, थोड़े क्षण उनको लग गए। लेकिन ब्रह्मा जी के थोड़े क्षण यहां का बहुत लंबा समय हो जाता है। तो दीर्घ काल के बाद जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि ये जो मंदिर था, जो बनाया हुआ था उन्होंने, वो समुद्री तट के बालू के नीचे ढक गया था, क्योंकि कई साल बीत गए थे और इस दौरान कई राजा आ गए थे और चले भी गए थे। तो उस समय वहां एक राजा थे जिनका नाम था गाल माधव। तो गाल माधव ने देखा कि यहां पर बालू के नीचे मंदिर है, तो उन्होंने बालू हटा दिया और मंदिर फिर से प्रकट हो गया। और गाल माधव की इच्छा रही कि मैं ही यहां भगवान की मूर्ति की स्थापना करूंगा। ठीक उसी समय राजा इंद्रद्युम्न फिर से लौटकर आ गए और दोनों में वाद हुआ। गाल माधव ने कहा कि नहीं, प्रतिष्ठा करने का अधिकार मेरा है। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि नहीं, मंदिर मैंने बनवाया था। तो उस समय पास में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के डाल पर एक भूषणी काक या कौवा रहता था, जो बहुत प्राचीन काल से वहां निवास करता था। युग युगों से वहां निवास करके वो राम नाम और हरि नाम का गायन करते रहता था। इसीलिए जब राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर का निर्माण किया था तो अपने घोंसले में बैठते हुए इस कौवे ने यह सारा कार्य देखा था। तब कौवा साक्षी बन गया और कौवे ने कहा कि राजा इंद्रद्युम्न का ही अधिकार बनता है इस मंदिर के ऊपर, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है कि बहुत हजारों हजारों साल पहले यही राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था और मैंने देखा कि समुद्री तट के बालू के नीचे आकर यह मंदिर ढक गया और फिर राजा गाल माधव ने बालू हटाकर यह मंदिर की स्थापना फिर से की है। तो ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित थे क्योंकि लेकर आए थे उनको इंद्रदुम्न राजा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गाल माधव राजा, आपने सत्य को छुपा दिया है, सही नहीं बताया आपने, आपने झूठ तो नहीं कहा लेकिन सत्य को छुपा दिया, वो भी झूठ के बराबर ही होता है, तो इसीलिए आप यहां मंदिर में नहीं रह सकते हैं। आपको मंदिर के पश्चिमी ओर जहां इंद्रदुम्न सरोवर नामक जगह है वहां आपको निवास करना होगा। तो गाल माधव ने इस आज्ञा को स्वीकार किया। तब इंद्रदुम्न राजा ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये क्षेत्र जो है बड़ा पावन क्षेत्र है, इसे श्री क्षेत्र कहते हैं और विशेष मुक्ति प्रदान करने वाला, उच्च कोटि की मुक्ति प्रदान करने वाला क्षेत्र है ये, और यहां पे मैं इस भव्य मंदिर में बनाना चाहता हूं, इसकी प्रतिष्ठा करना चाहता हूं। इसी कारण दोनों इस क्षेत्र और इस मंदिर का प्रतिष्ठा का कार्य कृपा करके आप संपन्न करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये जो श्री क्षेत्र है ये साधारण जगह नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा बनाया हुआ है और भगवान जब अवतार लेते हैं इस संसार में तो अपने धाम समेत यहां पर आते हैं और ये इस धाम में भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं। अब जो मंदिर का निर्माण इंद्रदुम्न राजा ने किया हुआ था उसके ऊपर उन्होंने एक कलश बनवाया था और उस कलश के ऊपर एक चक्र था और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस कलश के ऊपर, इस मंदिर के शिखर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मैं एक झंडा भर फरवाऊंगा और मैं ये वर देता हूं कि जो भी इस झंडे का दर्शन करे और उसके सामने अपना सर झुकाए और प्रणाम करे उसे मुक्ति मिल जाएगी। वैसे प्रतिष्ठा करना मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर राजा इंद्रदुम्न ने स्वीकार किया और ब्रह्मा जी ने वहां एक विशाल यज्ञ संपन्न किया और वहां पर उन्होंने नरसिंह देव की मूर्ति की स्थापना की। आज जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, बड़ा मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध है, वो इस यज्ञ स्थली में स्थित है और उसके अंदर जहां सीढ़ियां चढ़ते हैं उसके पास में, उसके पटांगण में जो नरसिंह देव की मूर्ति है वो वही आदि मूर्ति है जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। तो देखिए जगन्नाथ मंदिर का इतिहास कितना पुराना है। वैसे ये श्री क्षेत्र जो है ये एक शंख के आकार का है और राजा इंद्रदुम्न ने इस शंख के नाभि के जगह में इस मंदिर को बनाया और वहां एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था रामकृष्णपुर, जो आज जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात है। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी लौट कर चले गए यज्ञ करने के पश्चात तो इंद्रदुम्न राजा सोच रहे थे कि भगवान के आज्ञा के अनुसार मैंने मंदिर की स्थापना तो की लेकिन भगवान तो अभी तक प्रकट हुए नहीं, मंदिर में कौन से विग्रह की स्थापना मैं करूं। तो निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि जब भगवान मेरे सामने आए नहीं हैं तो मेरे जीवन का क्या लाभ है। तो फिर कुश शैया पे वो लेटे और उपवास करने लगे और सोचा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो उस रात भगवान उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि अरे इंद्रदुम्न, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा, बांके मोहन नाम के जगह में समुद्र के तट पर मैं समुद्र के लहरों में जल में बहते हुए मैं काष्ठ के रूप में, दारु ब्रह्म के रूप में तुम्हें मिल जाऊंगा। तो वहां जाना और वहां से उस काठ को लाकर मेरे विग्रह बनाना। तो बड़े प्रसन्न हुए राजा इंद्रदुम्न और सुबह सुबह अपने सैनिकों और ब्राह्मणों को साथ में लेकर समुद्र के तट पर गए, ठीक उसी ठिकाने जहां भगवान ने उनको सपने में बताया था। और जैसे बताए वहां से एक बड़ा काठ आया, बड़ा भारी था जो कि शंख चक्र गदा पद्म इन चिन्हों से सुशोभित था। बड़े खुश हुए इस दृश्य को देखकर राजा इंद्रदुम्न और उनके साथ में जो सैनिक थे और हाथी घोड़े थे, इनके संग इस काठ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन काठ इतना भी ऊपर उठे ना। तो उस समय बड़े निराश हुए कि हम इतने हाथी घोड़े से खींच रहे हैं लेकिन काठ जो है वो एक इंच भी हिल नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। वापस लौट कर गए, फिर निराश होकर जब सो रहे थे दोबारा भगवान स्वप्न में आए राजा के और कहने लगे कि मेरे भक्त विश्ववासु का निरादर हुआ है, इसलिए तुम विश्ववासु को लेकर आना और साथ साथ विद्यापति ब्राह्मण को भी लेकर आना और एक सोने का रथ बनाना। देखिए भगवान की इच्छा थी कि ऐश्वर्यशाली पूजा स्वीकार करें। इतने साल उन्होंने विश्ववासु शबर से उन्होंने बहुत सरल सेवा स्वीकार की थी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कंद मूल फल फूल की सेवा स्वीकार की थी। अब नील माधव जी की इच्छा थी कि बड़े धूमधाम से राजसी सेवा स्वीकार करें, तो उन्होंने कहा कि साथ साथ में एक सोने का रथ भी वहां पर तैयार आप रखना। तो राजा ने ठीक ऐसे ही किया, विश्ववासु और विद्यापति को ले गए और आसानी से वो काठ जो है वो उठ गया और फिर रथ में उन्होंने रखा और वापस महल में ले आए। मंदिर में वहां पर उन्होंने तमाम जो भी उनके राज्य में अच्छे अच्छे शिल्पकार कलाकार थे उनको सबको बुलाया और कहा कि सुंदर भगवान की मूर्ति बनाओ। लेकिन विचित्र बात यह हुई कि जो भी जो कलाकार वहां जाते थे अपने औजार लेकर स्पर्श भी नहीं कर पाते थे उस काठ को, जैसे ही स्पर्श करने जाते थे वो सारे उनके औजार चूर चूर हो जाते थे। तो फिर से निराश हो गए राजा इंद्रदुम्न कि ये क्या लीला है भगवान की। तो फिर से निराश होकर सोचने लगे कि भगवान मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ऐसा अच्छा है कि उपवास करके मैं प्राण को त्याग दूं। फिर से कुश शैया के ऊपर लेटे और सो रहे थे। आधी रात में भगवान तीसरे बार उनके स्वप्न में आए और कहने लगे कि चिंता नहीं करना, बहुत जल्द मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। और अगले दिन भगवान ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम है अनंत महाराणा। तो स्वयं भगवान आए उस शिल्पकार के रूप में। वास्तव में अन्य शास्त्र में अन्य बात भी बताई गई है। नारद पुराण में बताया जाता है कि ये विश्वकर्मा जो हैं, जो देवताओं के इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो आए थे इस ब्राह्मण के रूप में। अन्य शास्त्र में बताया है कि स्वयं भगवान आए थे। तो खैर भगवान जब आए उस रूप में तो उन्होंने कहा कि मैं 21 दिन में आप के लिए मूर्ति तैयार कर सकता हूं, लेकिन मेरे शर्त ये हैं कि सबसे पहली बात, यहां इस कमरे के भीतर, इस मंदिर के भीतर कोई प्रवेश नहीं करेगा, और जब मैं दरवाजा खोलूं तब आप अंदर आ सकते हैं। अगर आप उसके पहले अंदर आए तो सारा काम बंद हो जाएगा और काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो राजा को बात मंजूर हुई, उन्होंने कहा ठीक है। और फिर जो व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने 3 कलाकारों को रथ बनाने का आदेश दिया और वो काठ को लेकर मंदिर के अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर उन्होंने काम आरंभ किया तो औजारों की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी बाहर से, और हर दिन राजा सुबह दोपहर शाम जाकर उस ध्वनि को सुनते, बड़े प्रसन्न होते। और समय बीत रहा था, देख रहे थे आज 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तो ऐसे बड़े उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब मूर्तियां तैयार हो जाने वाली हैं। लेकिन 2 सप्ताह के बाद में अंदर से औजार की ध्वनि बंद हो गई। राजा सुनने लगे, बड़े चिंतित हो गए कि औजार की ध्वनि बंद क्यों हो गई। तो उनकी रानी वहां थी जिनका नाम था गुंडीचा। तो गुंडीचा देवी ने अपने पति से कहा कि खोलिए तो सही, देखिए क्या है। तो राजा ने कहा नहीं नहीं शर्त ये है कि 21 दिन तक मुझे नहीं खोलना है। और उनके मंत्री थे, मंत्री ने भी उनसे कहा कि नहीं, आपको शर्त कबूल थी, आपने कबूल की थी, इसलिए आपके लिए उचित नहीं है कि आप दरवाजा खोलें। लेकिन गुंडीचा महारानी ने ज्यादा अनुरोध किया तो राजा इनकार नहीं कर पाया, जैसे अक्सर होता है। तो फिर राजा ने दरवाजे खोल दिए मंदिर के, और जैसे खोल दिए तो तुरंत वो ब्राह्मण वहां से अदृश्य हो गए, मिले नहीं अंदर। और वहां पे उन्होंने 3 मूर्तियां देखी, और ऐसे ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जो आकार है वो मूर्तियां हैं, वैसे के वैसे वहां दिखाई पड़ी। तो यहां हम देखते हैं कि सुभद्रा देवी के हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है। जगन्नाथ जी और बलदेव जी के पैर नहीं है, केवल हाथ हैं, और हाथ हैं भी तो बड़े विचित्र रूप से बाहर यूं आते हुए, और उंगलियां भी नहीं है। तो राजा सोचने लगे कि अरे अरे, मेरे हाथ से कितना बड़ा अपराध हुआ, समय से जल्दी मैंने दरवाजा खोल दिया, काम आधा अधूरा रह गया, इसलिए भगवान की मूर्ति ठीक तरह से बन नहीं पाई। अब ये मेरे से इतना अपराध हुआ तो मेरा जीवन नष्ट हो गया। फिर अपने आप को अपराधी और पापी समझकर राजा फिर से जब रात को सोए तो भगवान फिर से स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे राजा, चिंतित मत हो, तुम्हारे भूल से मेरे ऐसे रूप आए, तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन ये वास्तव में मेरी लीला है। मैं इसी रूप में प्रकट होना चाहता था, इसलिए तुम्हारे हाथों से ये दरवाजे खुल गए। वास्तव में इसके लिए प्रेरणा मैं था, और मैंने ऐसा विचित्र रूप क्यों धारण किया है, क्योंकि मैं वेद वाक्यों की रक्षा करना चाहता हूं। अभी वेद वाक्यों की रक्षा, ये हमें कुछ अद्भुत बात लगती है। वेदों में कई जगह, खास करके उपनिषदों में बताया जाता है कि भगवान के जो हाथ पैर नहीं होते हैं, खास करके श्वेताश्वतार उपनिषद में बताया गया है, अपाणि पादो जवनो गृहीता, कि भगवान के पाणी और पाद अर्थात हाथ और पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलते हैं और फिर भी वो चीजें ग्रहण करते हैं। हमें चलने के लिए पैर चाहिए और कुछ ग्रहण करने के लिए हाथ चाहिए, लेकिन भगवान अपाणि पाद, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो चलते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं। पश्यति अचक्षुहु स श्रृणोति अकर्णः, वो देखते हैं लेकिन उनके आंख नहीं है, वो सुनते हैं लेकिन वो अकर्णः हैं, उनके कान नहीं है। भगवान का वर्णन ऐसे भी किया जाता है कई उपनिषदों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान के भौतिक हाथ नहीं है, उनके भौतिक कान नहीं है, आंख नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप दिव्य है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण आदि देव हैं, आदि भगवान हैं, और उनका जो रूप है वो सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद मतलब पूरी तरह से दिव्य, आध्यात्मिक। लेकिन हमारा जो शरीर है वो भौतिक है, जड़ तत्वों से बना हुआ है, और इसलिए हमारा शरीर असत है, अचित है और निरानंद है। लेकिन भगवान का स्वरूप दिव्य है, आध्यात्मिक है, इसलिए सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्मा जी ने कहा है। तो इसलिए उपनिषदों में बताया जाता है कि भगवान के कोई भौतिक अंग नहीं होते हैं। तो इस तरह से भगवान चाहते थे कि उपनिषदों में बताया गया है कि मेरे हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे रूप में प्रकट होकर ये सब चीजें करूंगा। इसलिए भगवान जी के हाथ नहीं है, हाथ भी हैं लेकिन उंगलियां नहीं हैं। तो भगवान ने कहा मैं यहां प्रकट होकर 56 भोग खाऊंगा दिन में 8 बार, हाथ न होते हुए भी मैं कैसे स्वीकार करता हूं भोजन, ये मैं दिखलाऊंगा सारे विश्व भर में। तो जो वेदों का वचन है कि भगवान को, भगवान के हाथ नहीं है, इस वचन की रक्षा करते हुए भगवान ने यह सिद्ध करके दिखाया कि ऐसे हाथ न होते हुए भी मैं 56 भोग दिन में 8 बार ग्रहण करता हूं। और दूसरी बात कि पैर न होते हुए भी मैं विश्व भर में भ्रमण करूंगा। और इसलिए रथ यात्रा निकलती है, भगवान जो है मंदिर के बाहर आते हैं और जगह जगह घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों को अपना दर्शन देते हैं। और श्रील प्रभुपाद की सेवा से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व भर में फैल गई है। सारे महत्वपूर्ण शहरों में दुनिया के रथ यात्रा हुई है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, लॉस एंजलिस, मॉस्को, सिडनी, हर एक कॉन्टिनेंट में ये रथ यात्रा हुई है। तो भगवान जगन्नाथ जी के पैर नहीं है आप देखते हैं, लेकिन फिर भी कहां कहां घूम कर आए हैं। यहां उपस्थित भक्त वृंद में से आप में से कितने लोग सिडनी, मेलबोर्न, वैंकूवर, न्यूयॉर्क, मॉस्को, ऐसे सब जगह गए हैं? नहीं गए है ना, आपके तो पैर हैं लेकिन फिर भी नहीं गए। देखिए, जगन्नाथ जी के पैर नहीं है फिर भी सब जगह होकर आए हैं। तो जगन्नाथ जी बताते हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं यहां आया हूं, इस रूप को स्वीकार मैंने किया है। तो जब इंद्रदुम्न राजा ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान ने उनसे कहा कि ऐश्वर्यशाली मेरी पूजा करते रहो और मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, दर्शन दिया करूंगा तुमको। तो उस समय इंद्रदुम्न राजा ने अनुरोध किया भगवान से, कहा कि मेरा एक निवेदन है कि जिस कलाकार की वजह से आपका ये रूप हुआ, मैं चाहता हूं कि इसके जो वंशज हैं, परिवार के लोग हैं, वही युग युग में इसी तरह से आपकी मूर्ति की स्थापना करते रहे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और मैं ये भी वरदान दूंगा कि विश्ववासु शबर जो हैं, इनके जो वंशज होने वाले हैं, ये हमें हमेशा मेरी सेवा में रहेंगे और इनको दैत कहते हैं। आज भी ये दैतपति जो होते हैं वो सेवा करते रहते हैं भगवान की जगन्नाथपुरी में। आप में से जो जगन्नाथपुरी गए हैं आपने देखा होगा इनको। और उन्होंने कहा कि जो विद्यापति ब्राह्मण हैं, उनकी एक ब्राह्मण पत्नी भी थी ललिता के अलावा। ललिता तो शबर पुत्री थी लेकिन उनकी एक ब्राह्मण पत्नी थी। तो ये ब्राह्मण पत्नी से होने वाले जो संतान हैं, ये संतान, इनके वंशज हमेशा मेरी पूजा अर्चना करेंगे इस मंदिर में। और ललिता से जो संतान उत्पन्न हुए हैं विद्यापति के, वो भी मेरे रसोई घर में मेरे लिए भोग बनाएंगे और उनका नाम होगा सुयार। तो इस तरह से वो प्रथा उस समय से शुरू होकर आज तक भी चल रही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जाकर कोई ऐसे सेवा नहीं कर सकता है, केवल अमुक लोग होते हैं जिनका अधिकार होता है, चाहे भगवान के लिए भोजन बनाना, भोग बनाना, किसी की अर्चा पूजा की सेवा करना। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन है, उस समय से चलती आ रही है। तो और एक निवेदन किया महाराज ने भगवान के प्रति, कहा कि आपका यह बड़ा कृपालु स्वरूप है, इसलिए कृपा करके आप केवल 3 दिन के लिए दर्शन नहीं दीजिए, 3 घंटे के लिए दिन में, लेकिन दिन में 21 घंटे आपका दर्शन खुला रहना चाहिए प्रजा के लिए। और आप दिन भर 56 भोग स्वीकार करते रहिए ताकि आपके हाथ कभी सूखे नहीं, क्योंकि हम जब भोजन लेते हैं भोजन के बाद में हाथ धोते हैं ना, तो हाथ धोकर तो हाथ गीले रहते हैं। तो राजा इंद्रदुम्न की इच्छा थी कि भगवान श्री जगन्नाथ के हाथ कभी सूखे नहीं हो जाएं, अर्थात वो खाते रहे दिन भर खाते हैं, फिर हाथ धोते हैं, फिर से खाते हैं, फिर धोते हैं। तो भगवान जी ने, जगन्नाथ जी ने कहा तथास्तु, मैंने ये सारे वरदानों की पूर्ति कर ली है, लेकिन तुम्हारे खुद के लिए तुम्हारी क्या इच्छा है ये बताओ। तो राजा इंद्रदुम्न ने कहा, मेरी ये इच्छा है कि मेरे कोई वंशज ना हो, मेरे कोई संतान ना हो। देखिए कैसा अद्भुत वर मांगा। लोग तो भगवान के पास जाते हैं कि हमारे संतान नहीं है, हमें संतान दीजिए, लेकिन साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगा कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, संतान नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये मंदिर मेरी संपत्ति न होकर केवल आपकी ही रहे, सिर्फ प्रजा के लिए रहे। क्योंकि जानते थे कि अगर उनका कोई संतान होता तो शायद वो इस मंदिर के ऊपर अधिकार जमाने का प्रयत्न करता, अगर उनका पुत्र नहीं करता तो शायद उनका पोता करता या और कोई वंशज कर लेता। तो उन्होंने कहा कि मुझे संतान ही नहीं चाहिए, ताकि ये मंदिर जो है केवल आपके लिए रहेगा और ये आपकी संपत्ति ही रहेगी। तो भगवान ने बिल्कुल एक मृदु हास्य से कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। इस तरह से भगवान की स्थापना, जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी की स्थापना उस मंदिर में हुई। तो हजारों हजारों साल पहले से ये मंदिर वहां विद्यमान है और हजारों सालों से भारतवर्ष के कोने कोने से लोग वहां जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं और उनका दर्शन करके अपना जीवन पावन कर देते हैं। 500 साल पूर्व वही जगन्नाथ जी जो कि श्री कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहां आए थे। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लगातार 18 साल के लिए रहे और उस समय हर साल जो वहां रथ यात्रा हुआ करता था, जबकि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अलग अलग रथ में बाहर आते थे सड़क के ऊपर, तो चैतन्य महाप्रभु उन रथों के सामने नृत्य किया करते थे, कीर्तन किया करते थे अपने भक्तों के संग में। 18 साल लगातार उन्होंने ऐसे किया। चैतन्य महाप्रभु उस समय भगवान के विरह की अनुभूति करते हुए सुंदर सुंदर श्लोकों का उच्चारण किया करते थे, लेकिन कोई भी इन श्लोकों का अर्थ समझता नहीं था। वो केवल ये देख रहे थे कि महाप्रभु कुछ श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है वो नहीं समझते थे। केवल उनके एक पार्षद थे जिनका नाम था स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप दामोदर को ही अकेले ये पता चलता था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन इन श्लोकों का अर्थ उन्होंने किसी को नहीं बताया। एक बार ऐसे हुआ कि महाप्रभु के शिष्य और प्रिय भक्त श्रील रूप गोस्वामी वहां जगन्नाथपुरी में विराजे थे, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए थे वो। तो जब रथ यात्रा के उत्सव में वो शामिल हुए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ये श्लोकों का उच्चारण करते हुए सुना तो तुरंत उन्होंने समझ लिया और अपने कुटिया में जाकर उन्होंने उस श्लोक का एक तात्पर्य लिखा, उसका अर्थ अपने भाषा में एक सुंदर श्लोक की रचना की उन्होंने और एक ताल पत्र के रूप पर इस श्लोक को लिखकर अपने कुटिया के छत में डालकर वो समुद्र में स्नान करने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु की आदत थी कि हर रोज सुबह को उपल भोग के बाद में वो हरिदास ठाकुर के कुटिया में आया करते थे। उपल भोग मतलब जगन्नाथ मंदिर के अंदर गरुड़ स्तंभ है जिसके पास में एक पत्थर है, तो पत्थर के ऊपर जो भोग चढ़ाया जाता है दिन के एक बार एक अमुक समय पर उसको उपल भोग कहते हैं। उपल मतलब पत्थर। वैसे जो भोग भगवान को चढ़ाया जाता है पर्दे के पीछे पर चढ़ाया जाता है, भगवान की मूर्ति के बिल्कुल सामने चढ़ाया जाता है, लेकिन ये एक विशेष भोग है जगन्नाथपुरी में जो कि जनता के सामने चढ़ाया जाता है। सभी लोग देख सकते हैं कि क्या भोग चढ़ाया हुआ है। ये सुबह सुबह होता है। तो फिर इसके बाद में उपल भोग के बाद में चैतन्य महाप्रभु समुन्द्र के किनारे से होकर हरिदास ठाकुर की कुटिया में आया करते थे और इस समय श्री रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के निवास स्थान में भी निवास कर रहे थे। तो जब वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि ये तालपत्र वहां पर पड़ा हुआ है। वास्तव में क्योंकि रूप गोस्वामी एक मुसलमान की सेवा में थे इसलिए हिंदू समाज ने उनको तिरस्कार कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था, और हरिदास ठाकुर का जन्म भी एक मुसलमान परिवार में हुआ था, इसलिए दोनों के लिए प्रवेश करना जगन्नाथ मंदिर में वर्जित था। पंडा लोग वहां को उनको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन जगन्नाथपुरी के धाम में आज तक भी ये प्रथा चलती है। चैतन्य महाप्रभु इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें कोई जाति भेद का कोई फर्क नहीं है। अगर केवल कोई व्यक्ति हिंदू भी हो लेकिन दुराचारी हो तो उसे मंदिर में जाने का अधिकार हो, लेकिन कोई दूसरे जाति का आदमी हो जो अच्छा भक्त हो भगवान का और उसे जाने के लिए मना है तो ये कैसा न्याय है। ये कैसा अध्यात्म है? तो चैतन्य महाप्रभु इस बात से, इस नियम से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी ताकि उपद्रव न मचे पूरी शहर में, इसलिए हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी वहां मंदिर में नहीं जाते थे। तो वो नहीं जा पाए, केवल उस झंडे का और उस चक्र का दर्शन करते थे, लेकिन जगन्नाथ स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप उनका दर्शन करने आते थे। इसलिए प्रभुपाद जी भी बताया करते थे अपने विदेशी भक्तों से कि आप लोग जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हो पुरी में, लेकिन स्वयं जगन्नाथ जी आपके पास आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। वो जगन्नाथ में और ये जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, वही जगन्नाथ है, बड़े कृपालु है। इसलिए हमारे संस्था के इस कौन के कितने सारे मंदिर हैं विश्व भर में जहां पर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया विराजमान हैं, और कितने हजारों लाखों लोगों को दर्शन देते हैं। केवल मंदिर में तो हैं, ऐसे नहीं, लेकिन बाहर भी सड़क पर जाते हैं रथ यात्रा में। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब वहां हरिदास ठाकुर की कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तालपत्र वहां है, तो उन्होंने पढ़ा और वो सुंदर श्लोक पढ़कर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भाव विभोर हो गए। और ठीक उसी समय रूप गोस्वामी लौटकर आए, चैतन्य महाप्रभु को देखकर तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया और हल्के से थप्पड़ मारा और कहा कि मेरे हृदय की बात को तुमने कैसे जान ली? मैं जो सुंदर श्लोक में दूसरे शब्दों में तुमने इसकी रचना की है, ये कैसे कर पाए तुम? तो वहां पास में स्वरूप दामोदर खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इससे सिद्ध ये होता है कि आपकी असीम कृपा रूप गोस्वामी के ऊपर हुई है, इसलिए रूप गोस्वामी को आपके हृदय की बात मालूम पड़ गई। तो महाप्रभु ने कहा, हां, मैंने रूप गोस्वामी को जब आलिंगन किया था तो सारी शक्ति प्रदान कर दी थी, जिससे कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में शास्त्र और ग्रंथ की रचना कर पाए, और आप भी जाकर उनको अधिक उपदेश देना ताकि आगे चल के भक्ति मार्ग का प्रचार ये और अच्छे ढंग से करें। तो उस श्लोक, वह श्लोक जो कि रूप गोस्वामी ने लिखा था, बड़ा सुंदर श्लोक है और हमारे आज के विषय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, खास करके जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। प्रियः सोयम् कृष्णः सहचरी कुरुक्षेत्र मेलितस् तथा हंसा राधा तदिदम् उभयौ संगम सुखम् तथाप्यन्तः खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनो मे कालिन्दी पुलिना विपिनाय स्पृहयति। इस श्लोक का अर्थ ये है, रूप गोस्वामी गोपियों के आवाज में बोल रहे हैं, गोपियों के मन की बात बोल रहे हैं। ये तब की बात है जब सूर्य ग्रहण के लिए कृष्ण भगवान और अन्य द्वारका के निवासी द्वारका से होकर कुरुक्षेत्र धाम में गए थे, क्योंकि वहां कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र समवेता युत्सव भगवद गीता का पहला श्लोक है। तो यह धर्म क्षेत्र है, बहुत पुराना तीर्थ स्थान है। तो वहां जब सूर्य ग्रहण हो रहा था तो द्वारका के निवासी वहां धार्मिक क्रियाएं करने के लिए गए थे। तो जब वृंदावन के निवासियों ने यह सुना कि कृष्ण भगवान वहां पर कुरुक्षेत्र में आने वाले हैं, तो सारे ब्रजवासी वृंदावन से कुरुक्षेत्र गए, क्योंकि कुरुक्षेत्र वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं है। सब चाहते थे कृष्ण का दर्शन करना है, तो वो भी वहां पर पहुंच गए। तो जब पहुंचे तो वहां उनकी बातचीत हुई, कृष्ण भगवान ने बहुत लंबे समय के बाद सबके सबसे वो मिले, बातचीत करने लगे, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों को और खास करके गोपियों को इतना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान जो उनके सामने हैं, उन्होंने सोने का मुकुट धारण किया हुआ है और बड़े ऐश्वर्यशाली रेशम और सोने के कपड़े पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर आभूषण हैं, और हाथी, घोड़े, रथ, नौकर, चाकर इत्यादि इतनी सारी रानियां। तो ये राजा का स्वरूप देखकर, ये ऐश्वर्य का स्वरूप देखकर ब्रजवासीगण दुखी हुए। वो कहने लगे, सोचने लगे कि ये कृष्ण हमें पसंद नहीं है, ये कौन सा कृष्ण है, हम इसे नहीं जानते हैं। हम तो उस कृष्ण को जानते हैं जो वृंदावन में रहा करते थे हमारे संग में और जो बांसुरी बजाया करते थे, वो कृष्ण हमें पसंद है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई नौजवान यहां से विदेश जाता है पढ़ाई करने के लिए, और या पढ़ाई या नौकरी करने के लिए जो भी हो, तो वहां चले जाता है और लौट के आता है तो बिल्कुल विदेशी बनकर आता है। रहन सहन का ढंग, बोलने का ढंग, विचार सब बदल जाते हैं। तो रिश्तेदार बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं कि अरे तुम जब यहां थे तो कितने सरल सीधे सादे थे, अभी लौट के आ रहे हो तो इतना चमक धमक तुम्हारे अंदर हो गया, हम तो पहचानते नहीं तुम्हें, जो पहले थे वही तुम अच्छे थे। तो ठीक उसी तरह से वृंदावन के कृष्ण को देखना चाहते थे ब्रजवासी, तो इसलिए गोपियां कृष्ण को वापस ले जाना चाहते थे कुरुक्षेत्र से वृंदावन। आपको मालूम है कि वृंदावन से मथुरा को ले जाने के लिए अक्रूर वृंदावन आए थे कंस के कहने पर, और गोपियां बड़ी दुखी हुई थी उस समय। तो इस समय कुरुक्षेत्र में गोपियां चाहती थी कि इस बार हम आपको अक्रूर आपको आके ले नहीं ले जा पाएंगे, हम ही आपको ले जाएंगे। तो कृष्ण भगवान को कुरुक्षेत्र से वो ले जाना चाहते थे वृंदावन, क्योंकि द्वारका और कुरुक्षेत्र का भक्ति करने का भाव ऐश्वर्य का है, लेकिन वृंदावन के भक्ति करने का भाव बड़ा मधुर है। तो इसलिए यहां एक गोपी अर्थात श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं, हे सहचरी, प्रिय सहचरी, हे प्रिय सखी, सुनो, वही कृष्ण है, प्रिय सोयम कृष्ण, वही हमारे कृष्ण खड़े हैं यहां पर, तथा हम स राधा तदम, और वो वही कृष्ण है, मैं वही राधा हूं। लेकिन हालांकि मिलन में कोई आनंद है, सुख है, संगमे सुखम, इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं और सुख तो हो ही रहा है, आनंद हो रहा है, लेकिन फिर भी अंतः अंदर ही अंदर मनो में कालिंदी पुलिना विपिनाय स्प्रहयति, मेरे मन में क्या विचार है, मेरी इच्छा ये है, मेरा मन वहां जाता है कालिंदी पुलिना, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना जी के तट में विपिन, जो वहां झाड़ है वन है, वहां जाता है, जहां पर तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे, जहां भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के रूप में वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर वहां पर मुरली की तान बजा रहे हैं, पांचवा नोट बजा रहे हैं पंचमजुषे, तो उस मुरली के तान को सुनना चाहते हैं और उस श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण को देखना चाहते हैं। ये हमारे सामने जो द्वारकाधीश आए हैं ये तो बड़े राजा है, ये राजा को हम नहीं पहचानते, हम तो सरल गांव के रहने वाले हैं, निवासी हैं, हम ये गांव वाले कृष्ण को देखना चाहते हैं, बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को देखना चाहते हैं, जो गायों को चराते थे, गोपियों के साथ में लीला करते थे, वो कृष्ण हम देखना चाहते हैं। तो इस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींचने लगे कि आओ आओ वृंदावन की ओर आओ। तो रथ यात्रा का महत्व यह है, जगन्नाथ जी तो वही कृष्ण है, जगन्नाथ जी का मंदिर ये द्वारका का प्रतीक है, और जगन्नाथ जी जब रथ में आते हैं तो कई किलोमीटर रास्ता होता है सड़क, वो पहुंचकर अंत होता है गुंडीचा मंदिर में। गुंडीचा वो इंद्रदुम्न राजा की रानी थी, तो गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन की तरह है, जगन्नाथ मंदिर द्वारका की तरह, कुरुक्षेत्र की तरह है। तो जब भक्त लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी को खींचते हैं जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर, तो उनको द्वारका से वृंदावन ले जाते हैं, और खास करके जब चैतन्य महाप्रभु नित्य करते थे तो उनके हृदय में ब्रजवासियों की भावना होती थी, और खास करके गोपियों की जो भावना थी वो व्यक्त करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके हमें सिखलाने आए हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण की भक्ति हमें करनी चाहिए। तो क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के भाव में थे और क्योंकि जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण है, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के बीच में हमेशा लीला हुआ करती थी। चैतन्य महाप्रभु के सुंदर कीर्तन नृत्य को देखकर जगन्नाथ जी इतने प्रभावित हो जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे, कि कभी कभी अपना रथ ही रोक देते थे, और ढूंढते थे कि कहां गए चैतन्य महाप्रभु, और जब फिर से महाप्रभु को देखते तो फिर से रथ चालू हो जाता। और इस तरह से महाप्रभु गोपियों के भाव में जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते करते जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर अर्थात वृंदावन की ओर ले जाते थे। तो रथ यात्रा का महत्व यह है कि कृष्ण भगवान को ऐश्वर्यशाली वातावरण से लेकर एक मधुर वातावरण में, वृंदावन के वातावरण में ले जाने के लिए ये यात्रा है। तो जब हम रथ यात्रा में भाग लेंगे, रथ को खींचेंगे, तब हमें इसे इस बात को याद रखना है, ये वृंदावन है। सारे शहर में तो बहुत ऐश्वर्य है, पैसे वाले लोग बहुत हैं, लेकिन यहां हमारा सीधा साधा मंदिर है, 100 साल पुराना। यहां देखिए लकड़ी भी खतरा है, कहीं नीचे भी गिर सकते हैं कोई लोग, साधारण सीधा है, देखिए पत्थर का है, कितना पुराना है। तो ये वृंदावन है, सरल सी जगह है, ज्यादा कोई ऐश्वर्य नहीं, यहां कोई सोना चांदी नहीं। तो यहां वृंदावन में हम जगन्नाथ जी को लौट कर लाना चाहते हैं ताकि सब शहर के लोग उनका दर्शन कर सकें और पावन हो जाए। और इसका तात्पर्य और एक भी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जगन्नाथ जी से अपने श्लोकों के माध्यम से कि मेरे हृदय में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में हमेशा वृंदावन का स्मरण करता हूं, कृष्ण का स्मरण करता हूं, इसलिए कृपा करके आप मेरे हृदय में विराजिए। तो जब हम रथ यात्रा करते हैं और हम भगवान के शिव विग्रह को हम के सामने नृत्य करते हैं तो हम ये भगवान से कह रहे हैं कि कृपा करके हमारे हृदय में प्रवेश कीजिए, हमारे हृदय को वृंदावन बनाइए, ताकि हम कभी भी आपको नहीं भूलें, कभी भी आपका स्मरण हर समय करते रहें। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है, कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं है। तो इस तरह से रथ यात्रा के समय हमारी भावना ऐसे होनी चाहिए। और कई सुंदर सुंदर लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत में और अन्य ग्रंथों में, लेकिन आज ये छोटी लीलाएं सुनाई इस उद्देश्य से कि हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए अच्छी सी भावना बन जाए, और जब हम रथ यात्रा में शामिल हों तो हमें पता चले कि रथ यात्रा का महात्म्य क्या है, उसका महत्व क्या है। जगन्नाथ भगवान की, श्री बलदेव जी की, सुभद्रा मैया की, गौर प्रेमानंदे। आपके कोई एक दो प्रश्न हो तो जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी थोड़े समय के लिए कीर्तन होगा, उसके बाद में महाप्रसाद, और महाप्रसाद के बाद में इष्ट गोष्ठी होगी। कृपा करके इष्ट गोष्ठी के लिए यहाँ पे आप